नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ चर्चा की तनाव के बारे में। तो तनाव क्या होता है, उसके कारण क्या हैं, उसका निवारण प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके बारे में हमने उस पर प्रकाश डाला। तो आज हम कुछ तनाव की प्रैक्टिकल सिचुएशंस, रियल लाइफ सिचुएशंस जो हम और आप डेली फेस करते हैं, उसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
नमस्कार।
तो डॉक्टर गिरीश पटेल, जैसे हमने आपको बताया था कि एक फेमस साइकोथेरेपिस्ट हैं और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, जो कि पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज के साथ एसोसिएटेड हैं। 5000 से भी ज्यादा लेक्चर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड उन्होंने दिए हैं और स्ट्रेस काउंसलिंग के लिए एक फेमस एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप अभी तक जो हमने बात की, हम सोच रहे थे कि अगर ऐसा हो तो ये कर सकते हैं, इनके लिए ये स्टेप्स हैं। मैं कुछ सोचता हूँ रियल लाइफ सिचुएशंस हम लोग
ले। हाँ, पूछिए।
फॉर एग्जांपल, आप देखिए कि अगर एक व्यक्ति है, एक फैमिली है, जो अपने घर में कोई व्यक्ति उसे अटैच्ड बहुत ज्यादा है और सडनली किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है। अब ये जो सिचुएशन है काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, और ऐसे टाइम में अगर हम किसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाने जाएं तो मुझे सोचते हुए भी बहुत खराब लगता है, और उस व्यक्ति को उस टाइम पे डिस्ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसी सिचुएशन के लिए आप क्या कहेंगे?
तो ऐसी सिचुएशन में दुख तो होगा ही, ऐसे सिचुएशन में तो रोना जरूरी है। अगर वो रो नहीं रहा है तो उसको रुलाओ भले, क्योंकि वो बिल्कुल अगर एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा तो भी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और एक जो काम शुरू में करना चाहिए कि उसे किसी रीति से एक्सेप्ट करवाएं। यहां भी डेथ को कई बार सोचते हैं कि भी डेथ हुई नहीं है, क्योंकि उसे साइकोलॉजिकल वो एक ट्रॉमा लगा है, एक शॉक है बहुत बड़ा, वो शॉक से व्यक्ति बाहर नहीं आ पाता है। तो जितना जल्दी उसे वो एक्सेप्ट करेगा वह जल्दी रिकवरी होगी। फिर वह जो दुख का पीरियड तो रहना है, परंतु वो कम हो तो अच्छा है। अगर वो एक सप्ताह में, 10 दिन में उससे सचमुच नॉर्मलनेस में आ जाए तो बेस्ट। अगर वह स्थिति 3 महीना 4 महीना तक कायम रही तो फिर कहेंगे कि भी इसे बड़ी समस्या है।
जी बिल्कुल, आपने सही बोला। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये हम चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन ये हो कैसे?
हाँ, वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। अभी इसमें तो ये भी बताना चाहूंगा, जो आपने कहा ना कि रियल लाइफ सिचुएशंस, तो इसमें दो इश्यूज लेने चाहिए। मेरी जो वर्कशॉप्स होती है उसमें भी मैं छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके ऐसे सिचुएशन देता हूँ, और उनको फिर ये कहता हूँ कि आप यह सोचो कि पहले तो क्या नहीं करेंगे, और फिर दूसरा है कि क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी एक तो कि इसको जैसे एक्सेप्ट नहीं करना, वह नेगेटिव हुआ तो कोई रीते से उसको हम एक्सेप्ट करवाएंगे। दूसरा, ऐसी सिचुएशन में भी ये नहीं सोचो कि भी नींद की गोलियां खा के सो जाना है। कुछ लोग ऐसा करते भी, लेकिन वह गलत बात है। उल्टा उससे वह जो दुख है वह थोड़ा शॉर्ट टाइम भले रहे, लेकिन वह होता रहे। फिर अब क्या करना है, पॉजिटिव स्टेप्स जो लेने हैं कि अपनी एटीट्यूड को चेंज करो। अब जैसा व्यक्ति वैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल कि भी आपकी मां की डेथ होगी, कि भी उनकी एज 70 ईयर्स की थी, तो भी दुख तो डेफिनेटली होगा, परंतु अगर हम उस समय अपनी एटीट्यूड को कोई रीति से चेंज करें कि देखो कहीं है कि भी जिनकी मां तो 4 साल में ही गुजर गई है, तो फिर उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो 40 साल का हुआ या 50 साल का हुआ तब तक मेरी मां थी, वो कंप्लीट 70 ईयर्स तक जिंदा थी, तो इसलिए आई एम पॉजिटिव इन दिस। लाइक दैट यू विल बी एबल टू चेंज योर एटीट्यूड। और एक जो इसमें बहुत बड़ी बात है, वो आध्यात्मिकता मदद करेगी कि हमें आत्मा ने इस शरीर का त्याग किया है, आत्मा तो अविनाशी है। उस रूप से अगर देखना प्रारंभ करें कि जो मेरा प्यार था वह शरीर के प्रति नहीं था, वास्तव में मेरा प्यार होना भी चाहिए आत्मा के प्रति। अगर आत्मा के प्रति प्यार है तो आत्मा तो अविनाशी है, तो आज भी मेरा उनके प्रति प्यार है, तो उसे सचमुच दुख है वह नहीं।
और ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति चला जाता है, जैसे कहते हैं जीव आत्मा, तो आत्मा चली जाती है, जीव तो विनाशी है, तो उस समय और रोना या और नेगेटिव सोचना उस आत्मा को और दुख पहुंचाना होता है। और ऐसे टाइम में अगर हम लोग मैं ये नहीं कहता कि दुख नहीं होता, हर एक को होता है, हमें भी लगेगा वो, लेकिन उसको सहज रूप से शुभ भावना देना और वो करना, तो उस आत्मा को भी शांति मिलती है।
और एक बात, ये प्रैक्टिकल है, एक बार हम ऐसे इश्यू को डिस्कस कर रहे थे तो एक डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कहा कि भी मेरे पिता की मृत्यु, लेडी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा मेरे पिता की मृत्यु हुई तो मुझे बहुत दुख होता था, कई दिनों तक मैं रोती थी। एक दिन मैं पार्क में बैठी थी और रो रही थी तो अचानक मुझे विचार आया, कहते हैं कि जो शरीर त्याग देते हैं वो फरिश्ते बनते हैं, और अगर अभी मेरे पिता यहां से गुजरे फरिश्ते के रूप में और मुझे देखे कि मैं रो रही हूं तो उनको दुख होगा, तो मुझे रोना नहीं। कहते तुरंत मैंने आंखों पोंछ दिए, मैं नॉर्मल हो गई। तो ऐसे अगर सही पर्सपेक्टिव में देखे तो बहुत अच्छा हो। आपने शायद नरसिंह मेहता का उदाहरण भी सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हुए, तो उनकी पत्नी ने जब देह का त्याग किया तब तो उन्होंने लिखा भी हिंदी में, गुजराती में लिखा कि हिंदी में कहेंगे कि भी अच्छा हुआ कि जो जंजाल थी वह खत्म हो गई, अभी मैं शांति से भगवान का नाम लूंगा। पर हरेक का यह लक्ष्य नहीं होता है, परंतु फिर भी जब यह समस्या आती है तो उसमें हम पॉजिटिव थिंकिंग तो जरूर कर सकते,
क्योंकि जो भी जीव जन्म लेता है उसे विनाश तो होना ही होता ही होता है। तो ये ट्रुथ जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस फाइनल फेट की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। और मैं समझता हूँ ऐसे समय पर ना केवल जिस व्यक्ति के साथ यह घटना होती है, लेकिन उसमें हमारा भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग उसके दुख में और दुखी ना होकर उसको शुभ भावना दें, उसको शांति की वाइब्रेशंस दें, प्रकंपन दें। क्योंकि मैंने देखा है जो हमारी थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग या शांतमय जो हमारी वाइब्रेशंस निकलती हैं, वह उस आत्मा को शांति जरूर देती है। और यदि हम ही उसके साथ मिल मिलकर जोर जोर कर और उसके दुख को बढ़ाएं और उस गई हुई आत्मा के बारे में ज्यादा चिंतन करें तो प्रॉब्लम हो जाती है।
और अब इसमें जो आपने सिचुएशन पूछा है वह अगर केस स्टडी के रूप में देखे तो कौन सी सिचुएशन है, उदाहरण के रूप में कि भी आपकी एज 25 साल की है और वाइफ की डेथ हुई, तो दिस इज एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन।
डेफिनेटली
देन नो यू विल नीड टू टेक दिस सिचुएशन बीइंग अ चैलेंज ऑल्सो, कि भी बहुत बड़ा सदमा है आपके लिए परंतु उसको मैं चैलेंज के रूप में लूंगा।
जी
उल्टा ये भी कुछ कि भी मैं ऐसा कुछ पॉजिटिव करके दिखाऊंगा कि भी उस आत्मा को भी शांति मिलेगी, उस आत्मा को शायद गर्व होगा कि भी मैंने इतनी अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करके दिखाया।
लाइफ ऑलवेज मूव्स ऑन, ये तो है ही है, और किसी की रोके संसार कभी रोकता नहीं। और आदमी को यही, मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि चलते ही जाना है आगे, कभी अपनी जिंदगी में ब्रेक नहीं लगाना है, हर परिस्थिति चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव उससे लेकर आगे बढ़ते चले जाना है। डॉक्टर साहब एक ये सिचुएशन आपने क्लैरिफाई की, हालांकि अभी भी लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं समझता हूँ इसका अभ्यास या इसकी एक अवेयरनेस ही हमें इससे थोड़ा जल्दी बाहर ला सकती है, किसी भी मानव को हेल्प कर सकती है। एक और जो रियल लाइफ सिचुएशन देखी गई है वह ये है कि ओल्ड एज में, बुढ़ापे में लोगों को बहुत तनाव होता है। अक्सर आप देखिए कि कोई व्यक्ति है जैसे ऊंची पोस्ट पर था, अच्छी पोस्ट पर था, सडनली रिटायरमेंट आ जाता है और उसके बाद फिर एक तनाव आ जाता है। सडनली देखता है कि लोग मेरे अराउंड नहीं है, जो 10 लोग घूम रहे होते थे, क्योंकि आज कहा भी जाता है कुर्सी को सलाम है, तो वो अंदर से एक भाव आता है कि अब मुझे कोई पूछ नहीं रहा, और ये चीज अंदर डिप्रेशन लाती है, हीन भावना लाती है, ये बहुत बड़ा तनाव देती है। आप क्या कहना चाहेंगे, इससे कैसे डील किया जाए?
तो अब इसमें सबसे पहले तो पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, और सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है, क्यों, हम जानते हैं कि रिटायर तो मुझे होना ही है एक दिन, तो अगर व्यक्ति 5-10 साल पहले अगर तैयारी करने लगता है तो उसे तनाव नहीं होगा कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपने समय को प्रोडक्टिवली कैसे बिताऊंगा। सबसे बड़ा तनाव या डिप्रेशन इस बात को लेकर के होता है कि जो व्यक्ति सवेरे 6 बजे उठता था, तैयार करता था, ट्रेन पकड़ता था, सारा दिन व्यस्त होता था, और अचानक करके एक दिन आता है जब वो सवेरे, अरे आज तो कुछ काम नहीं है, बस अभी मुझे कहीं नहीं जाना, तो उसी बात को सोच सोच के वह डिप्रेस्ड होता है। तो पहले से तैयारी करना एक बहुत अच्छा, समझो तैयारी नहीं भी की तो भी आप सोचिए कि भी इस समय भी मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूं। बहुत अच्छा उदाहरण अन्ना हजारे जी का है कि जो आर्मी में ट्रक ड्राइवर थे
जी।
और जब रिटायर हुए तो बताते भी है कि भी मैं निराश हो गया था, एक बार तो ये भी सोचा कि अभी जीवन जीने लायक नहीं है, परंतु जब अपने गांव गए उन्होंने देखा कि भी यहां तो बहुत काम करने के लिए आवश्यकता है, और उस समाज सेवा के अंदर जुट गए तो आज जग प्रसिद्ध हो गए। तो ऐसे रिटायरमेंट में भी आप सोचिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
या ये कहा जाए कि इसको एक प्लानिंग की तरह आप लेकर चलिए, क्योंकि ये सिचुएशन तो आनी ही होती है, और इसमें नेगेटिविटी ना ढूंढ के अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्टिव काम आप करिए।
अभी भी देखिए कि आप टीचर है तो उस रूप का कोई काम कर सकते हैं, घर में बैठे नहीं रहिए। अभी भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है
जी हाँ,
जो गरीब है कि भी जिनको भी प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है उनके लिए आप कुछ सचमुच बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अगर आप करने लगे तो उस रूप से। वैसा नहीं भी है तो भी कोई बीमार है उनको आप कोई तरीके से मदद रूप हो सकते हैं। हमें बस ये सोचना चाहिए कि कौन से कार्य में मुझे आनंद आएगा, भले उससे पेमेंट नहीं मिलती है कोई बात नहीं है, परंतु वह काम करने में मुझे सुख का अनुभव होगा,
एंजॉयमेंट
आनंद का अनुभव होगा। ऐसा कार्य अगर बूढ़े व्यक्ति करने लगे तो उल्टा समाज की बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगे।
तो ऐसी परिस्थिति अगर आती है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें स्पिरिचुअलिटी का या मेडिटेशन का आपने इतना समय किया, उसमें इसका क्या रोल है, क्या महत्व है? क्योंकि एक आम व्यक्ति भी रिटायर जरूर होता है और एक व्यक्ति मैं समझता हूं जो कि योगी जीवन जिसका रहा है, जो मेडिटेशन जिसने किया है, तो वह इस सिचुएशन को किस तरह डील करता है?
अगर उसने पहले से किया है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उल्टा वह तो यह सोचेगा कि मैं अधिक से अधिक समय मेडिटेशन के लिए दूं। अगर गहराई से सोचा जाए हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना हो तो प्रतिदिन काफी समय देना चाहिए।
ना केवल मेडिटेशन के लिए समय देगा लेकिन जब ये सिचुएशन आएगी उसको एक्सेप्टेंस बड़ी नेचुरल होगी उस चीज की। ये भी एक इम्पोर्टेंट
एक्सेप्टेंस भी होगी उसकी, और दूसरा ये भी होगा कि वो ये भी सोचेगा कि मैं औरों को भी मेडिटेशन सिखाऊं।
जी बिल्कुल, अपनी कैपेबिलिटीज को और प्रॉपरली यूज करेगा
तो वो औरों को अगर मेडिटेशन सिखाने लगेगा तो उससे उसको और भी फायदा होगा। मैंने बहुत सारे किस्से देखे हैं कि जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में भी कम से कम मैंने 100-200 तो ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो क्योंकि मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे थे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी और आध्यात्मिक प्रगति हुई। जो नहीं करते हैं क्योंकि मानसिक रूप से तैयारी भी नहीं तो उसके कारण उनको डिप्रेशन आने की संभावना हो सकती है। और एक रिटायरमेंट में करना चाहिए, आमतौर पर भी कहेंगे ओल्ड एज के लिए
जी,
कि हम दूसरों से एडजस्ट होने की कोशिश करें।
बिल्कुल, ये एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ी
बुढ़ापे का जो मैंने प्रॉब्लम देखा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि भी सब कुछ आपके कंट्रोल में था, लोग आपको सलाम कर रहे थे, सारे घर को भी आप मैनेज कर रहे थे, बुढ़ापे में भी बच्चे बड़े हो गए वो मैनेज करने लगे हैं, तो तब यह समझे कि अब मैं रिटायर हुआ हूं तो मुझे सचमुच बच्चों को सब कुछ सौंप देना है। एक बहुत अच्छी बात बताई जाती है कि जो कंप्लीट है कि जिसमें यहां भी बुढ़ापे में क्या करे उसका अच्छा सा सॉल्यूशन मिल जाएगा। बच्चा 2-3 साल का हो तब तक उसके साथ राजा की तरह व्यवहार करो, उसे पूरी फ्रीडम दो, एकदम मुक्ति दो, जो चाहे वो उसे करने दो। फिर 3 साल से 10 साल तक का हो तो उसके साथ शिष्य की तरह व्यवहार करो, उसको अच्छे से सिखाओ, पूरी डिसिप्लिन लाओ। फिर 10 साल से 40 साल का हो जाए तब तक उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करो, बस उसे अपना मित्र बना लो। और 40 साल से बड़ा हो जाए फिर उसके साथ पिता की तरह व्यवहार करो, आप पुत्र बन जाओ। यह नहीं होता है, बुढ़ापे में जो प्रॉब्लम आता है कभी भी हम यही समझते हैं कि बेटा 40 साल का हो गया, हम समझते अभी तो 10 साल का है, मैं कहूं वैसे ही तुम करो तो उसके कारण सारी समस्या आती
जी।
तब अगर हम यह समझे कि अभी वो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूं और मुझे उसके साथ एडजस्ट होना है, अपनी सारी दिनचर्या को ऐसी बनानी है कि बच्चे औरों के साथ अगर आप एडजस्ट होंगे तो बुढ़ापे में कोई समस्या
जी हाँ। यही सिचुएशन जैसे नेगेटिव हमने अभी आपको बताई थी कि कोई डेथ किसी के यहाँ हो जाती है, अगर कोई योगी फैमिली है, कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाली है, उनके यहाँ अगर ऐसी सिचुएशन आती है डेथ की किसी रिलेशन की, तो वो इसको किस तरह एनालाइज और परसीव करेंगे?
नहीं, ऐसे केसेस में तो हमारी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में भी हमने देखा है
जी
कि उल्टा वो ज्यादा पीसफुल होते हैं। देखो मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन सुनाता हूं, अभी भी आप उनको मिल सकते हैं। डॉक्टर जयंत पटेल है बड़ौदा में
जी,
कि जो जब मेडिकल की स्टडीज कर रहे थे तब ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय के संपर्क में आए
जी।
और वो खुद बताते हैं कि मेडिटेशन से मेरे में कितना परिवर्तन आया। कहते हैं कि जब मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा था, फाइनल MBBS में वो शायद पढ़ रहे थे, और उनकी मदर को कुछ ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो एकदम टेंशन में आ गए। काफी 6-8 मास तक पढ़ाई भी नहीं कर पाए और बस वो फिर राजयोग का अभ्यास करने लगे। और करीब 1 साल ही बीता होगा, उनकी मदर और फादर दोनों का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। वो स्कूटर पर जा रहे थे, ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुई, ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। तो बताते, देखो मैं सेम व्यक्ति हूं, 1 साल ही मैंने ध्यान का अभ्यास किया है, परंतु ध्यान से मेरे में इतना परिवर्तन आया कि मन एकदम स्टेबल था। हम वहां पर गए भी, डेड बॉडीज को ली तो भी मन स्टेबल था। लोगों को भी आश्चर्य होता था कि देखो ये कितना अपने मन को शांत रख पाए हैं। और वो घर में सबसे बड़े थे, उनकी छोटी बहन और भाई की भी उन पर जिम्मेवारी थी, फिर भी उन्होंने बताया कि सब कुछ मैंने स्टेबिलिटी से मैं इसको मैनेज कर पाया, क्योंकि मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा फोर्स है ऐसे केसेस में। तो
अच्छा डॉक्टर साहब, ये दो ऐसी सिचुएशन है हम आजकल देते हैं बच्चों के अंदर।
हाँ जी,
बहुत तनाव आ गया है बच्चों में अलग अलग सिचुएशंस में। एक तो पढ़ाई का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, दूसरा एडिक्शंस बहुत हो गए हैं, ड्रग एडिक्शन। तो ऐसे तनाव को कैसे दूर किया जाए?
एक दूसरे से रिलेटेड है,
बिल्कुल रिलेटेड है, आप सही कह रहे
हैं। तो जो एग्जाम का उनका टेंशन है, उसके लिए मैं कहूंगा कि चैलेंज के रूप में लो। अगर वो चैलेंज के रूप में लेंगे तो कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी
जी।
और एक सरल सी बात बच्चों को मैं हमेशा बताता हूं, मैं कॉलेज के विद्यार्थियों को कई बार ये उदाहरण देता हूं, भले सरल सा है परंतु उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मेरे जीवन में भी इस बात को सोच करके परिवर्तन आया है कि अगर विद्यार्थियों को और 5 या 7 साल पढ़ना है, जब तक प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिल जाए फिर बड़ा सरल होता है, और दूसरे 50 साल वह जीने वाले हैं, तो उनके बीच में 2 चीजों की च्वाइस होती है। एक तो यह है कि भी 5 साल पढ़ाई नहीं करें, बस ऐसे ही समय को बिता दे, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकते, माता पिता अच्छी स्कूल कॉलेज में भेज सकते और कोई ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते। और अगर वह ऐसा करेंगे तो उनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो जो दूसरे 50 साल वह बिताने वाले उसमें बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। और दूसरा सोल्यूशन है कि 5 साल थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के पढ़े, मोटिवेशन से पढ़े, और ऐसा अगर करेंगे तो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बढ़ेगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगा, तो और जो 50 साल है उसमें सब कुछ जीवन में मिलेगा,
जीवन में मिलेगा,
जीवन जो वो चाहते हैं वैसे धन लग्जरीज वह सब कुछ मिलेगा। तो 2 के बीच में पसंद करना होता है।
ऐसी सिचुएशंस में माता पिता को, क्योंकि उनको भी बहुत स्ट्रेस होता है, बच्चों से ज्यादा आजकल माता पिता परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत दुखी है, बहुत स्ट्रेस में है, हमें देखा नहीं जाता, तो उनको किस तरह कूप अप करना चाहिए?
माता पिता को एक तो यह करना चाहिए कि बच्चों को सपोर्ट करें, जो जो बातों में भी माता पिता बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं उसमें सपोर्ट करें।
हाँ,
जैसे कि भी बच्चों की आवश्यकता, कई बार बच्चा कहते हैं मैं जल्दी उठूंगा, अगर मुझे एक कप का चाय मिल जाए तो मैं जल्दी उठ सकता हूँ, तो अभी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अधिकतर माताएं करती है, लेकिन फिर भी स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, पिता को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कई बार मदर्स तो का कोऑपरेशन मिल जाता है लेकिन फादर का कोऑपरेशन नहीं मिल पाता कि फादर कहेगा मैं आके टीवी देख रहा हूं, अगर वो टीवी देख रहा है तो फिर बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़े।
जी हाँ, बिल्कुल।
तो तब एक प्रकार से उनको ये सहयोग मिले तो बहुत अच्छा है, और मोटिवेट भी करे। मेरे एक मित्र है जो स्किन स्पेशलिस्ट है, तो उन्होंने खुद मुझे बताया, वो बड़े अच्छी उनकी प्रैक्टिस है, तो कहते मैं घर जाके भले 11 से 12 भी बच्चे को पढ़ाता हूं। तो दिस इज एन इंस्पायरिंग एग्जाम्पल कि दी फादर को कैसे, भले वो प्रोफेशनल भी हो तो भी बच्चे के लिए टाइम दे, तो ये भले वो 1 घंटा पढ़ाना बहुत बड़ी चीज नहीं है।
डॉक्टर साहब, ये तो हमारी कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस आपने हमें बताई, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेडिटेशन, योग खासकर जो आप प्रैक्टिस करते हैं इतने 30 सालों से, वह इसमें किस प्रकार से मदद करता है, उसका क्या रोल है, उसकी क्या साइंटिफिक बेसिस है, किस तरह वे एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाता है, उसकी थिंकिंग में परिवर्तन लाता है?
ये बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। सबसे पहला तो जो फायदा है मेडिटेशन का, कि मेडिटेशन से आप शरीर और मन को रिलैक्स कर पाते हैं। बल कहना बड़ा सरल है कि रिलैक्स हो जाओ, लोग भी एडवाइस देते हैं, परंतु करना सबसे मुश्किल होता है। तो इसलिए जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, 5 मिनट भी आप अच्छे से ध्यान का अभ्यास करो, आपका मन रिलैक्स हो जाएगा और रिलैक्सेशन एक स्ट्रेस का एंटीडोट है
जी।
दूसरी जो बात है कि मेडिटेशन से ये बिलीफ सिस्टम में ही परिवर्तन आता है कि भी लोग समझते हैं कि भी स्ट्रेस तो आनी है, जीवन मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मेडिटेशन से हम यह समझते हैं कि इन सभी चीजों से आप ऊपर उठ सकते हैं और सचमुच एक शांतमय, एक पॉजिटिव जीवन है आप व्यतीत कर सकते हैं। और एक जो बहुत बड़ा फायदा मैंने मेडिटेशन से देखा है कि जो सिखाने से नहीं होता है, कितने भी सेमिनार्स ले लो, उन्हें बातें करो कि एटीट्यूड्स को चेंज करो, एटीट्यूड को चेंज करना बहुत जरूरी है, कहीं एग्जाम्पल दे दो, तो भी लोगों की एटीट्यूड चेंज नहीं होती है। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करने लगता है, ब्रह्म कुमारी सेंटर पर भी मैंने देखा है कि एक दो मास ही आने लगते हैं तो स्वाभाविक ही उनकी एटीट्यूड में चेंज हो जाता है। वह जो बातें हमको बताते हैं उसमें भी परिवर्तन आ जाता है,
क्योंकि उनके चेहरे ही परिवर्तन।
हाँ, बस मैं यही बताने जा रहा हूं, क्योंकि चेहरे पे ही यह रिफ्लेक्ट हो जाता है कि देखो ये व्यक्ति कितना शांत है। कोई ऐसे ही देखे तो भी उसे लगता है कि ये व्यक्ति शांत है। और एक जो बहुत बड़ी बात है मेडिटेशन की कि आप स्वाभाविक ही पॉजिटिव थिंकर बनते हैं और डीकंडीशनिंग होता है। आज बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम कंडीशन्ड हो गए हैं, एक प्रकार से सोचने में, कर्म करने में भी कंडीशनिंग हो गई।
बेसिकली देखा जाए तो कंफर्ट जोन्स हमारे बन गए।
हाँ,
क्योंकि जो हम करना चाहते हैं या जो हम सोचना चाहते हैं हम वही सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि यही अच्छा है।
हाँ,
कोई भी व्यक्ति या कोई थॉट उससे बाहर आता है तो हम लोग उसको एक्सेप्टेंस नहीं ला पाते हैं। मेडिटेशन हमें एक फ्रीडम ऑफ थॉट्स देता है।
जी, बहुत अच्छा कहा कि ये कंफर्ट जोन से आप सहज ही बाहर आ जाते,
हैं
और फिर जीवन में जो आनंद का अनुभव होना चाहिए वो आनंद का अनुभव हो सकता है,
हैप्पीनेस जो।
और एक जो बात है, गहरी बात है वास्तव में मेडिटेशन की, कि जैसे कि पानी को गैस पे रखेंगे तो गर्म होगा,
हाँ,
गैस से हटा दो 4-5 घंटे के बाद क्या होगा, फिर से ठंडा होने लगेगा। तो बस ऐसा ही है कि भी जब तक आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो अपने को शरीर मान के ही काम कर रहे हो
जी।
तो क्या किया आपने, आत्मा को गैस पे रख दिया ना, बॉडी के साथ आपने रखा है, बॉडी मान के ही कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आत्मा टेंशन में आने वाली है, अशांत होगी, डिस्टर्ब होगी
जी।
परंतु जब आप मेडिटेशन का अभ्यास करते हो, यह समझते हो कि मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न एक दिव्य चेतना हूं, तो स्वाभाविक ही आत्मा के जो मूल गुण हैं, शांति, आनंद, प्रेम, उसका आप अनुभव करने लगते हैं। और एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव मेडिसिन है, जितना मेडिसिन काम नहीं करेगी उतना यह मेडिटेशन का जो अनुभव है वह मेडिटेशन का अनुभव है वह काम करता है।
देखा जाए तो योग, ये जो मेडिटेशन है, ये हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालता है। एक हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव बना देता है, एक्सेप्टेंस पार हमारे अंदर बढ़ जाती है, टॉलरेंस पार ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, या यूं कहें कि आर्ट ऑफ लिविंग, जो रियल आर्ट ऑफ लिविंग है वह हमें आ जाता है। एंड हमें कोई, जो हम ब्रेक्स की बात करते थे या रिलैक्सेशन टेक्निक्स की बात करते थे, रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली कम्स, मतलब पॉजिटिव सिचुएशन हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, लेकिन जो मेडिटेटिंग पर्सन है उसकी लाइफ में एक स्थिरता आ जाती है
ऑटोमेटिक। और एक जो बात होती है कि हम परिस्थिति को सही पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं।
पर्सपेक्टिव
आमतौर पर व्यक्ति सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहा है।
बिल्कुल, जैसे हमने कहा अभी तक, वी सी द सिचुएशन एज दे आर, उसी को उसी के रूप से ही देखते हैं, ऐसे नहीं कि जैसे हम उसे देखना चाहते हैं।
तो इसलिए मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है ना। कोई भी व्यक्ति को थोड़ा भी तनाव है तो मैं कहूंगा कि मेडिटेशन का जरूर अभ्यास करो, यहां तक कि आपको तनाव नहीं है तो भी करो, क्योंकि तनाव विदाउट नोटिस आना है
जी,
नहीं कह के नहीं आएगा कि 2 दिन के बाद ये प्रॉब्लम में आने वाला
हूं।
तो इसके कारण हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ये जो फाउंडेशन टेक्निक है, वह मेडिटेशन की टेक्निक को समझ ले कि जो विनामूल्य वास्तव में उपलब्ध है
जी।
और फिर थोड़ा भी अभ्यास करे तो अनेक फायदे हों।
और मैं समझता हूं कि ये मेडिटेशन जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है उसकी लाइफ ही एक बैलेंस्ड हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि मॉर्निंग के टाइम में मेडिटेशन कर रहा है तो वह रिलैक्स है, और इवनिंग में जब काम पे जा रहा है या मॉर्निंग में काम पे जा रहा है तो परेशान है। नहीं, एक लाइफ में एक बैलेंस, एक स्थिरता आ जाती है, एक खुशी आ जाती है जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं कि इज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन और हर सिचुएशन को इजिली एनालाइज करके लाइफ। जैसे हमने रियल लाइफ सिचुएशंस की बात की, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग परिस्थितियां होती होंगी और अलग अलग परिस्थितियों का एक ही आंसर, एक ही सोल्यूशन है कि प्रैक्टिस सम मेडिटेशन, गिव टाइम टू योरसेल्फ, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को कुछ ऐसा समय दीजिए जिसमें हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, अपना संबंध स्वयं परमात्मा से जोड़ पाए।
बहुत अच्छी तो बात है कि कर्म योगी बनना है, जो आपने कहा ना कि सवेरे सिर्फ थोड़ा समय
मेडिटेशन, बिल्कुल
हाँ, कि आप रेलवे स्टेशन पे भी खड़े हैं, मेडिटेशन इज अ कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग,
स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड। ऐसा नहीं कि जरूरी आपको म्यूजिक चाहिए, आपको अगरबत्ती चाहिए, आपको साइलेंस चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मेडिटेशन तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये मेडिटेशन के लिए व्यक्ति कहाँ जाए, किधर वो मेडिटेशन सीखेगा, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें?
जरूर, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भारत में करीब 7000 से अधिक सेवा केंद्र है
जी।
आप देखेंगे कि भी जो बड़े शहर है कि भी बॉम्बे दिल्ली, जिसमें 100 जितने सेवा केंद्र है, हर एक जगह पर आप नजदीक में 2-3 किलोमीटर में, बॉम्बे में देखो तो ईस्ट वेस्ट में भी आपको 2-2 सेंटर बनाए गए हैं
जी।
ऐसे ही करीब करीब डिस्ट्रिक्ट प्लेस में भी आपको सेंटर्स मिलेंगे। यहां तक भी यह लक्ष्य रखा गया है कि भी गांव में भी छोटे छोटे सेंटर हो, तो अगर थोड़ा सा भी पूछा जाए तो नजदीक में जो सेवा केंद्र हो वहां पर बिना मूल्य यह कोर्स है ऑफर किया जाता है।
हाँ डॉक्टर साहब, मेडिटेशन की टेक्निक्स के बारे में तो और डिटेल में हम आपसे चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। अभी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने बहुत ही सुंदर रीति से हमें बताया कि मेडिटेशन से किस प्रकार हम रियल लाइफ सिचुएशंस को डील कर सकते हैं और अपनी जिंदगी से तनाव को हटा सकते हैं। तो आपने देखा कि रियल लाइफ सिचुएशंस, तनाव से परिपूर्ण सिचुएशंस हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनका डील करने का तरीका, इनको जीतने का तरीका केवल एक है, वह है राजयोग मेडिटेशन। यदि हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो इन सिचुएशंस पर हम इजीली विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारीज में मुफ्त सिखाई जाती है और यदि आप इंटरेस्टेड हों तो अपने नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं मालूम उनका एड्रेस तो आप हमें लिख भी सकते हैं। हमारा ईमेल है omshantistudio@gmail.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9873666555। आशा है आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। हम अगले शुक्रवार अपनी चर्चा मेडिटेशन के विषय में, कि मेडिटेशन क्या होती है, कैसे किया जाता है और उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, डॉक्टर साहब से जारी रखेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Shine.